الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی ہم تفسیر اس کلاس میں پڑھ رہے تھے. یہ کلاس ہمارے تین اسینشلز فار ویمن کلاس کی تربیتی کلاس ہے. مطلب اس میں جو کلاسز ہوتی ہیں تین اسینشلز پروگرام میں، وہ تربیت کی نیت سے ہی کری جا رہی ہوتی ہیں، خالصتاً تعلیم کی نیت سے نہیں کری جا رہی ہوتی. اس کے برعکس جو ہمارا عالمہ یا عالم پروگرام ہوتا ہے، تو وہ ایک جس میں زیادہ زور تعلیم کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت. تو عالم عالمہ والا جو پروگرام ہے، اس میں تعلیم کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے، علم کے اوپر، اور اس میں علم کی جو ہے وہ تفصیلات ہوتی ہیں، گہرائی ہوتی ہے، دقائق ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ جو سلسلہ ہے، یہ زیادہ یہاں پر فوکس تربیت کے اوپر ہے. تعلیم بھی ظاہر ہوتی ہے، علم بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بات اس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے، یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس سے کہ ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عمومی طور پر لوگوں کو اس کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، فرق پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، کہ تربیت و تعلیم میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم، کیونکہ لفظ ایک ساتھ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، تو یہ کلاس جو ہے وہ پھر ہم نے اسی وجہ سے، جو اپنی عالمہ کی طالبات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اس کلاس کو جو ہے وہ مینڈیٹری بنایا ہوا ہے، یعنی کمپلسری اور ضروری اٹینڈ کرنا. تو یہ جو گھنٹہ ہوتا ہے، تو ان کا عالمہ کورس کی کلاسز جو ہوتی ہیں اس کے اندر سسپینڈ کر دی جاتی ہیں، اور اس گھنٹے میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دین اسینشلز پروگرام کے اندر ہی آ کر کے لاگ ان کر لیتی ہیں. اسی وجہ سے شاید آپ کو اس کلاس میں ذرا تعداد بھی زیادہ نظر آتی ہے طالبات کی. تو بہرحال اس تھوڑی سی تمہید کے ساتھ پر ہم نے جو آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر ہم آگے چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے معروف و مسائل جو ہیں وہ ہم نے مکمل ابھی نہیں کیے تھے پچھلی کلاس میں. معارف و مسائل تھے اس آیت کے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ جب ہم نے چاہا، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، تو ہم نے کیا کیا؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم نے اس کے جو عیش کرنے والے لوگ تھے، یعنی اس کے جو صاحب ثروت لوگ تھے، تو ان کو نہ ہم نے حکم کیا. ففسقوا فیہا، پھر اس کے بعد انہوں نے فسق کیا. فسق جو ہے وہ گناہ کرنے کو کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ فحق علیہ القول، تو ان کے اوپر قول ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دمبرناہا تدمیرا، ہم نے ان کو اکھاڑ مارا، یعنی ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے لفظ امرنا کی تفسیر پڑھی تھی، کہ بھائی امرنا کا کیا مطلب ہے. تو پہلی تفسیر اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے نا، وہ اپنے انبیاء بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اپنے دین کے علماء بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये दोनों हुक्म ही की कस्म है ना, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, ये दोनों ही हुक्म है। एक है अच्छा काम करने का हुक्म करना और दूसरा है बुरे काम से रोकने का हुक्म करना। तो अम्बिया हों या उलमा मशायख हों, उनको भेजा जाता है और वो फिर ईमान और अताअत का हुक्म करते हैं उस बस्ती के लोगों को। लेकिन जो उसके एस्टैब्लिश लोग होते हैं, अमीरों कबीर किस्म के लोग होते हैं ना, तो वो जब उसकी नाफरमानी करते हैं इस हुक्म की, तो उसके बाद फिर जो है ना वो उनके ऊपर हमारा अजाब साबित हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक तफसीर थी। दूसरी तफसीर इसकी एक और भी थी, कोई अगर आप में से बताना चाहे, थोड़ा सा क्विज भी तो होना चाहिए ना क्लास में, कि अमरना का एक मतलब तो ये था कि हम अपने नेक बंदे भेजते हैं, वो उनको नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरी बल्कि दो और तफसीरें भी थी, किसी को याद है? या ओपन बुक सवाल है, आप बुक से देख करके भी बता सकती हैं। ठीक है, क्या मरना की दूसरी तफसीरें क्या है? जी, कोई बताएगा? बुक देख करके जवाब देना भी, ये भी एक स्किल होती है। हर कोई ना किताब देख करके जवाब भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसी वजह से ना बहुत सारे टीचर्स ये ओपन बुक क्विजेस भी लिया करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। जी, किसी ने बुक खोली भी होगी तो वो जवाब देगा, ये भी एक अलग बात है। बुक ही नहीं खोली हुई तो फिर ओपन बुक का फायदा ही कोई नहीं। ये तो एक आसान वाला सवाल था, इसका ही जवाब कोई नहीं दे रहा, तो फिर इसके बाद तो एक और मुश्किल वाला सवाल भी आना था, उसका जवाब फिर आप कैसे देंगी? काब अल्लाह, लिखने में जरा देख लें कि आप लिख क्या रहे हैं। काब अल्लाह, किसी कम पे अजाब भेजते हैं। कब अल्लाह किसी कौम पे अजाब भेजते हैं? नहीं, अमरना लफ्ज की क्या तफसीर है? सवाल ये है, लफ्ज अमरना की दूसरी तफसीर क्या है? जल्दी जल्दी किताब खोल लें आप कम से कम। घर की अगर कोई मजबूरी है ना, तो उसके लिए तो हम भी मना नहीं करते कि आप क्लास सुनते सुनते घर का काम कर लें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी जो है वो इस क्लास को किचन के कामों के साथ कर रही है। ठीक है ना, इतनी भी नाकदरी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से डरना भी चाहिए ना कुछ। डरने वरने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल ही बस बेफिक्र, हम तो मौलवी बन चुके हैं, हम तो जो है ना वो दीनदार बन चुके हैं, अब तो अल्लाह ताला के लिए वाजिब हो गया है कि हम जो करते फिरें हमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। है, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला के कुरान के अजमत को कुछ हमें समझना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला को हमारी कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे जो है ना वो तरले करते रहे, हम जो करते फिरें अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे साथ जो है बस मजबूरन, है ना, मजबूरन हमारे साथ जन्नत वाला मामला कर दें। अल्लाह ताला कोई मजबूर नहीं है, अल्लाह ताला को हमारी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला के बहुत बंदे मौजूद हैं, बहुत बंदियां मौजूद हैं, क्योंकि उसको खुश करने की फिक्र में रहते हैं हर वक्त और उसकी नाराजगी से डरते रहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जन्नत जो है ना वो उनके लिए है, कोई जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को कि हमसे अपनी जन्नत को भरते फिरें, जबकि हम जन्नत की कोई आरजू ना कर रहे हो। जब अल्लाह किसी काम पे अजाब भेजते हैं तो साहिबे सरवत लोगों को अहसास और असरत में मुब्तला कर देते हैं। आप तो लिख ही ऐसे रही हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है, भरी बात का हुक्म करना। बस जो डराने के ऊपर फिर नहीं डरते, तो फिर उनके साथ क्या होता है। अच्छा, तो अमरना की एक तफसीर जो है ना, वो ये अब किसी को मतलब, यानी आप भी ना आबेल मुझे मार है, व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देना डांट खाने के लिए। तो अमरना की तफसीर दूसरी ये लिखी, अक्सरना, ठीक है, अक्सरना फीहा मुतरफीहा, ठीक है, कि हम उस कौम के अंदर जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी कसरत कर देते हैं, ठीक है, अमीरों की कसरत कर देते हैं, बहुत सारे लोग अमीर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको इतना माल पैसा मिल जाता है कि उनकी जरूरियात भी पूरी हो जाती हैं और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। ये है अमीर होने की तारीफ। अमीर कौन होता है? रिच, ये वो वाला अमीर, रिच वाला, ठीक है, कि जिसकी ख्वाहिशात भी जिसकी जरूरियात भी पूरी हो रही हो और जिसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हो, ठीक है, और उसको कोई दुनियावी तौर पे तंगी महसूस ना हो रही हो, तंगी महसूस। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त इतनी महंगाई है, इतना जो है ना वो करेंसी जो है वो इतनी बुरी हालत में है, लेकिन लोगों की ख्वाहिशात फिर भी पूरी हो रही है ना, ठीक है ना, फिर भी लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, अगरचे के बिजली महंगी है, अगरचे के बहुत मामला खराब हैं, क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि अमीर लोगों की कसरत, क्यों? इसलिए कि साथ साथ जो है ना, ये सारे लोग जो है वो फाइनेंशियल तंगी में भी मुब्तला है, फाइनेंशियल तंगी, मुआशी तंगी के अंदर भी किसी ना किसी शक्ल के अंदर मुब्तला है, अगरचे के उसके अंदर भी रहते हुए भी ना अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा पाकिस्तान के बारे में, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अक्सरियत जो है ना वो बहुत अमीर कबीर बना दी गई है, ठीक है। तो इसकी एक दूसरी तफसीर है अक्सरना। अमरना की दूसरी तफसीर क्या है? अक्सरना, कि हम कसरत कर देते हैं अमीर लोगों की उस कौम के अंदर, ठीक है। और अमरना की एक तीसरी तफसीर भी थी अमरना, कि असल में ये जो है ना, इसकी ये एक और किरात भी है, एक और तरीके से भी ये लफ्ज नाजिल हुआ है, वो तरीका क्या है? अमरना, ठीक है, अमरना, कि हम जो है ना वो मालिक बना देते हैं, हम अमीर और हाकिम बना देते हैं उस बस्ती के अमीर लोगों को, उस बस्ती के अमीर लोगों को हम उस बस्ती का हाकिम बना देते हैं, ठीक है। अब ये हाकिम बनना जो है ना, ये हर जगह ऐसा नहीं होता, किसी के ध्यान में ये ख्याल आ सकता है कि हाँ भाई, जो हाकिम होते हैं वो तो हमेशा अमीर लोग ही हुआ करते हैं, तो ये कौन सी बात हो गई कि हम अमीर लोगों को जो है वो हाकिम बना देते हैं, हाकिम तो हमेशा ही अमीर लोग हुआ करते हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता कि जो फाइनेंशियली रिच लोग होते हैं वो हाकिम भी बन जाएं, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के अंदर आप देखते हैं ना कि वहां पे जो जो गवर्नमेंट्स आती हैं, ठीक है, तो वो जो भी इलेक्टेड, उनका इलेक्शन का एक सिलसिला है, तो उसके जरिए से जो गवर्नमेंट आती है, तो जो प्रेसिडेंट होता है ना वो हमेशा अमीर तरीन इंसान नहीं होता अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप जो था ना, ये एक जमाने में अमेरिका का अमीर तरीन इंसान कहलाता था, ठीक है, लेकिन वो जमाना बहुत पुराना जमाना था। जब ये प्रेसिडेंट बना है ना, तो ये अमेरिका का क्या रिचेस्ट पर्सन नहीं था, बल्कि बहुत ही कम रिच पर्सन था। उसी तरह से बराक ओबामा, ये भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, लेकिन बराक ओबामा जो है ये कोई फिल्थी रिच किस्म का कोई इंसान नहीं है। जो वहां के रिच लोग हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है, या जो है वो आजकल जो ट्विटर, जिसको एक्स उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया, ठीक है, तो उसका जो इलॉन मस्क है, ये अमीर लोग हैं, और वॉरेन बुफे एक और बुफेट किस्म एक और इंसान है, ठीक है, वो वहां के अमीर कबीर लोगों में से हैं, वो कोई थोड़ी प्रेसिडेंट है, और वो गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं वो लोग, ठीक है ना। उसी तरह पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा एक बंदे का नाम, क्या नाम है उसका, रियाज समथिंग, मलिक रियाज, ठीक है ना, ये पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान कहलाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे इस तरह के होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्क कुछ ऐसे हैं कि जिनको जिनके अंदर जो अमीर तरीन लोग हैं ना, वही गवर्नमेंट भी चला रहे होते हैं, वही गवर्नमेंट भी चला रहे होते हैं। ठीक है, तो अमरना फीहा मुतरफीहा, ठीक है, अमरना मुतरफीहा, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है वो वहां के अमीर लोगों को वहां का हाकिम बना देते हैं। ठीक है, ये हर जगह नहीं होता जहां अल्लाह ताला का इरादा ऐसा होता है। अच्छा, तो लफ्ज अमरना की तीनों तफसीरें ये क्लियर हो गई सबको भाई? कोई सवाल हो किसी को इसके ऊपर? एक तो ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए से वहां पर हुक्म भेजते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो नाफरमानी करते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर अजाब आ जाता है। दूसरी क्या थी कि हम अमीरों की कसरत कर देते हैं उस कौम के अंदर, फिर वो लोग नाफरमानी करते हैं, फिर उनके ऊपर अजाब आ जाता है। और तीसरी तफसीर क्या है कि हम अमीर लोगों को हाकिम बना देते हैं, ठीक है, और फिर वो लोग जो है गुनाह करते हैं, और फिर उनके ऊपर अजाब साबित हो जाते हैं। ठीक है, कोई सवाल इसके ऊपर? अच्छा, अब इसके ऊपर एक सवाल हम आपसे करने वाले हैं कि अगर किसी ताकतवर, किसी हाकिम, राइट, उसका इरादा हो कि वो किसी को सजा देना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो सजा देने से पहले अपने इस इरादे को बता दे, अपने इस इरादे का इजहार कर दे, और साथ साथ उसकी वजह भी बता दे और उसका तरीका भी बता दे कि जब मेरा इरादा होगा ना किसी को हलाक करने का, तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, तो ये लोगों के लिए अच्छी बात है कि ये लोगों के लिए बुरी बात है? कि उनको बता दिया गया पहले से कि भाई जब ऐसे ऐसे मामलात होंगे ना, तब जो है वो हलाकत का इरादा होगा, ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात हो गई ना कि भाई आप ऐसे मामलात से अपने आप को बचा लें, क्योंकि पहले से आपको बता दिया गया है कि अगर ऐसे मामलात आपके मुआशरे में होंगे ना, तो इसका मतलब यह है कि अब अजाब आने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से, यानी एक तरह से बचने की तरकीब बता दी गई ना आपको, ठीक है, अपने आप को बचाने की तरकीब बता दी गई। और दूसरा ये भी है कि एक मायूसी की भी तो कैफियत हो सकती है ना किसी के ऊपर, ठीक है, कि भाई सारे हालात इतने खराब हो रहे हैं और इतनी बुराइयां हो रही हैं और इतने गुनाह जो है वो आम हो रहे हैं, तो क्या अब हमारे बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है? क्या हमारी बस्ती के ऊपर, या हमारे शहर के ऊपर, या हमारे मुल्क के ऊपर क्या अल्लाह का अजाब आने वाला है ना? इतने गुनाह हो चुके, इतने गुनाह लोग करना शुरू हो गए, ठीक है, तो एक मायूसी की कैफियत भी तो आ सकती है ना, खुसूसन उस बस्ती के जो नेक लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये मायूसी की कैफियत आ सकती है कि बस अब तो लगता है अल्लाह का अजाब आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हमें अल्लाह ताला जो है वो पहले से ये बता चुका हो कि देखो जब मैं बस्ती के ऊपर अजाब भेजता हूं ना, तो उस बस्ती के ऊपर ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, ठीक है, तब फिर मेरा अजाब आता है, ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या, जो लोग मायूस हो रहे थे वो अगर देखें कि क्या वाकई वो वाली निशानियां पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं। अगर पूरी हो रही हैं तो फिर तो वाकई बहुत ही डरने की बात है कि अल्लाह का अजाब बस आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर वो निशानियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर उम्मीद रहती है ना कि इसका मतलब यह है कि उमूमी अजाब नहीं आने वाला है, उमूमी अजाब नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, इनफरादी तौर पर तो अजाब आ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, लोग जो है वो उनको सजाएं मिल रही हैं, लोग जो है वो बहुत बुरी हालत के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन इनफरादी है ये मामला, इज्तिमाई मामला ऐसा नहीं है कि पूरी बस्ती के ऊपर, पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो अजाब आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले से हमें बता दिया है कि जब मैं पूरी बस्ती के ऊपर अजाब भेजता हूं ना, तो उस वक्त ये मामला होता है कि उसके जो अमीर लोग होते हैं वो हाकिम बना दिए जाते हैं, या उसके जो है ना वो अमीरों की कसरत कर दी जाती है, और फिर उसके बाद वो गुनाह कर रहे होते हैं, फिर जो है वो बस्ती के ऊपर अजाब आ जाते हैं, ठीक है। ये बात कहाँ से आई? ये बात ऐसे आई कि किसी ने इस आर्टिस्ट से सवाल किया चंद दिन पहले, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं और ये है इस तरह से, तो क्या अल्लाह ताला का अजाब आने वाला है, इस किस्म का एक सवाल था। तो इस आर्टिस्ट को ना उस वक्त आप लोगों को जो ये आयत पढ़ा रहे थे ना, तो ये आयत अल्लाह ताला ने दिल में डाली कि अल्लाह ताला जो है वो अपने कुरान में अजाब की निशानी बता रहे हैं, ठीक है, अजाब की निशानियां बता रहे हैं कि जब हम किसी बस्ती के ऊपर अजाब लाना चाहते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसके जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको जो है वो हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान के हालात इस वक्त देखें, ठीक है, तो बेशक बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानी बताई है ना, उमूमी अजाब की निशानी, वो वाले हालात नहीं है, वो वाले हालात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो अमीर लोग होते हैं ना, तो वो हुकूमत में नहीं होते, ठीक है। अब आप कहेंगी अच्छा ये जो क्या कहते हैं जो जरदारी है, ये तो अमीर बंदा है तो ये तो हुकूमत में है ना, और जो है वो नवाज शरीफ, ये अमीर बंदा है तो ये तो हुकूमत में है। ये कम इल्मी की वजह से हम ऐसी बात करते हैं, कम इल्मी की वजह से, ठीक है ना। और बल्कि कहा जाए कि मीडिया, ये जो मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है ना, मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से हम ऐसी बात कर रहे होते हैं। मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के ऊपर तो बस ये चंद खानदानी हुकूमत कर रहे हैं, है ना, पिछले 40 साल से और 30 साल से जो है वो चंद खानदान पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मीडिया के अंदर मुस्तकिल ये बात सुनाई जा रही, पिछले दिनों बल्कि बहुत ज्यादा सुनाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन जिनको हकीकत का पता है वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये लोग जो है जो हुकूमत के अंदर आ रहे होते हैं ना, तो पहली बात तो ये कि असल में तो ये हुकूमत कर भी नहीं रहे होते हैं, असल में तो ये पपेट्स होते हैं, ये जो भी है जो हुकूमत में आ रहे होते हैं, ये असल हुकूमत इनके पास होती ही नहीं है पाकिस्तान की, ये तो पपेट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन चले अगर आप मान भी लेते हैं कि इनके पास असल हुकूमत होती है, ठीक है, कभी ये मतलब जरदारी के पास हुकूमत होती है या नवाज शरीफ के पास हुकूमत होती है, जो शहबाज शरीफ की शक्ल में आ जाए, ठीक है ना, तो ये जो असल हुकूमत अगर इनके पास होती भी है ना, तो भी देखें ये कितने दिन तक टिकते हैं, ये टिकते कितने दिन है, ये चंद दिन के लिए टिकते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो इनको उतार दिया जाता है, और अक्सर जो है ना वो जेल में ही पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, या जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर तो हम ये मान भी लेना कि इनके पास असल हुकूमत है, तो भी ये लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं होती इनके पास, बहुत ही शॉर्ट टर्म हुकूमत होती है, चंद दिन के बाद जो है ना वो उनको उतार दिया जाता है, फिर अगले बंदे को लेकर आ जाते हैं, वो चंद दिन के लिए हुकूमत करता है, फिर उसके बाद उसको उतार दिया जाता है, फिर अगले बंदे को लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी पुराने वाले को दोबारा लेकर के आ जाते हैं, कभी नए वाले को लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उमूमी अजाब की निशानी बताई है ना, वइजा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुतरफीहा फफसकू फीहा फहक अलैहिल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा, ये वाली निशानी जो है ना, ये कम अज कम पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, नहीं होती, ठीक है। शायद यही वजह है, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो अजाब आते हुए नजर तो आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वो टल भी जाते हैं। 75 साल से यही सिलसिला चल रहा है, 75 साल से एक अजाब आता है लेकिन वो पूरा आने से पहले टल जाता है, फिर दूसरा अजाब आ रहा होता है फिर वो पूरा आने से पहले टल जाता है, फिर उसके बाद तीसरा अजाब आ रहा होता है फिर वो भी आने से पहले जो है वो टल जाता है, ठीक है ना। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, आने वाले अजाब टलते हैं, है? ये कोई निस्बत है, ये कोई ताल्लुक है, ये कोई अल्लाह वाले हैं, ठीक है, कि जिनकी वजह से जो है ना वो आने वाले अजाब टलते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम फकीरों के लिए मायूसी की बात जो है वो खत्म हो गई अल्लाह के कुरान के अंदर, अल्लाह के कुरान की मदद से, ठीक है भाई। वो एक तूफान आता है ना हमारे शहर के अंदर, ठीक है, हमारे शहर का हाल ये है, कराची शहर से जिसका भी ताल्लुक है, कि वहां पे अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए ना तो बस सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चंद दिन पहले जो है वो एक, ये खाली एक मिसाल है, चंद दिन पहले जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्टॉर्म आ रहा था, ठीक है, अब वो आ रहा था इस तरफ और आते 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 जो है ना, उसने अपना रुख तब्दील किया और वो बिल्कुल एक गैर आबाद और यानी बंजर किस्म की जगह पे जा करके वो स्ट्रॉन्ग लैंडफॉल हो गया। अगर वो इस तरफ आ जाता ना, ठीक है ना, जिस तरफ वो आ रहा था कराची शहर की तरफ, तो उसके बाद जो जो होना था ना, फिर तो यानी उमूमी तौर पर लगता था कि यानी हलाकतें होंगी, बहुत बड़ी तो तादाद में हलाकतें होंगी, बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी, ठीक है ना। इसलिए कि हमारे यहाँ तो थोड़ी सी बारिश हो जाए अगर चंद दिन, तो उसके बाद थोड़ी यानी हलाकतें शुरू हो जाती हैं। वो अगर आ जाता तो कितनी हलाकतें होनी थी उस शहर के अंदर, ठीक है। तो यही मामला जो है वो लगता है पिछले 75 साल से चल रहा है। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो बिलाखिर किसी ना किसी तरीके से फिर हमें तौबा की तरफ माइल करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या लिखा है कि फ्यू इयर्स बैक दिस वाज एप्लीकेबल व्हेन वी वर चाइल्ड, आवर स्टेटस वाज डिफरेंट, बट एज वी ग्रू अप आवर स्टेटस इम्प्रूव्ड एंड नाउ अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, सही बात है। ये तो आपने अपने इनफरादी तौर पे कह दिया ना कि हाँ, हम अमीर होते हैं, फिर अमीर होने के बाद दोबारा गरीब हो जाते हैं, ठीक है। पहले भी गरीब थे, फिर उसके बाद अमीर हो गए, फिर उसके बाद गरीब हो गए, ठीक है। तो ये भी समझ लें कि ये भी अल्लाह की तरफ से जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। लेकिन डिस्गाइज किया है कि कर्स नजर आ रहा होता है,
बिल्कुल
ये पैसे हमारे पास खत्म हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन असल में ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अगर हमारे पास जो है ना वो माल दौलत की कसरत हो जाए ना, ठीक है, तो हम तो फिर अल्लाह ताला को नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, जैसे कहते हैं ना उर्दू जुबान में, हम अल्लाह ताला को घास भी ना डालें। ये मुहावरा समझते हैं ना, घास डालना, यानी किसी को कुछ थोड़ी सी अहमियत देना, उसको कहते हैं घास डालना। हम तो अपने परवरदिगार को घास भी ना डालें अगर हमारे जो है ना वो फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई आपने गुनाहों से तौबा तो करी नहीं थी, गुनाहों से तौबा करने के बाद अगर फाइनेंशियल हालात अच्छे होते तो फिर तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे होते, लेकिन हमने तो गुनाहों से तौबा करी नहीं। अब अगर फाइनेंशियल हालात अच्छे हो गए, ठीक है, तो फिर तो यही होगा ना कि हम तो जो पहले थोड़ी बहुत बंदगी करते थे, अब तो हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने गुनाहों के साथ हमें जो है ना वो अमीर कबीर नहीं बनाया है, ठीक है। बहरहाल आगे हम पढ़ रहे हैं कि हज़रत मूसा शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इस सारी तफसीर को बयान करने के बाद कहते हैं कि इनमें से पहली क़िरात का हासिल तो ये हुआ कि ऐसे खुश ऐश सरमायादारों को कौम का हाकिम बना दिया जाता है, और दूसरी क़िरात का हासिल यह है कि कौम में ऐसे लोगों की कसरत कर दी जाती है कसरत कर दी जाती है, ठीक है। तो इन दोनों से मालूम हुआ, ऐश पसंद लोगों की हुकूमत या ऐसे लोगों की कौम में कसरत कुछ खुशी की चीज नहीं है, अजाब इलाही की अलामत है, ठीक है। अब जाहिर है कि हमने कुरान मजीद की निगाहों से तो अपने मुआशरे को देखना छोड़ दिया है ना, हम तो काफिरों की दी हुई निगाहों से, या तो हम काफिरों के दिए हुए चश्मे को पहन करके हम दुनिया को देख रहे होते हैं। तो इस वजह से ना, जिस तरह काफिर जो है ना वो किसी मुल्क की तरक्की को द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन दैट कंट्री इससे मेजर करते हैं, है ना। ये इनकी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इनकी इकोनॉमिक क्या कहती है, इकोनॉमिक साइंसेस क्या कहती हैं कि जी इस मुल्क की जो है ना वो मुआशी तरक्की की इंडिकेशन क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ मिलियनियर्स इतने ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ बिलियनियर्स इतने ज्यादा हो गए। कुरान मजीद जो खालिक का कलाम है ना, इंसान और पूरी की पूरी कायनात के खालिक का कलाम है, वो हमें क्या बता रहा है, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कौम के अंदर अमीर लोगों की कसरत का हो जाना ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये तो अजाब इलाही की अलामत है। हक तआला जब किसी कौम पर नाराज होते हैं और उसको अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं, तो उसकी इब्तदाई अलामत ये होती है कि इस कौम के हाकिम व रईस ऐसे लोग बना दिए जाते हैं जो ऐश पसंद अय्याश हों, या हाकिम ना भी बने तो उस कौम के अफराद में ऐसे लोगों की कसरत कर दी जाती है। दोनों सूरतों का नतीजा ये होता है कि ये लोग शहवत व लज्जात में मस्त होकर अल्लाह की नाफरमानियां खुद भी करते हैं और दूसरों के लिए भी उसकी राह हमवार करते हैं, बिलाखिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको कहते हैं अब बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट परसेप्शन ऑफ रियालिटी, है ना। हकीकत को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज। ये है कुरान मजीद का जो अंदाज है ना दिखाने का चीजों को, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अनफॉर्चुनेटली हमने काफिरों से जो अंदाज किया हुआ ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हम अच्छे खासे बज़ाहिर दीनदार बनने के बावजूद अपनी अपनी सोच को नहीं तब्दील कर रहे, अपने दुनिया को देखने के अंदाज को नहीं तब्दील कर रहे। हमारे अभी तक दिमागों के अंदर वही खन्नास भरा हुआ है, वही खन्नास भरा हुआ है जो कि इन्होंने जो है ना वो अपने मीडिया और अपने तालीमी निज़ाम के जरिए से हमारे दिमागों में भर दिया है। अब हम दुनिया को उसी नज़र से देख रहे होते हैं, ठीक है ना। अगरचे के तजवीद क्लास के अंदर जो है ना वो कलकला करने की कोशिशें भी कर रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है, लेकिन जिंदगी को देखने का मेयार और रुख जो है ना वो हमारा नहीं तब्दील हुआ होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें उस रुख को भी तब्दील करना जरूरी है, बल्कि उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। तो ये जो फरमाया कि दूसरों के लिए भी उसकी राह हम हमवार करते हैं, तो इसके ऊपर एक अरबी जुबान का मकूला भी है कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, के जो लोग होते हैं ना वो तो अपने मुलूक के दीन के ऊपर होते हैं। तो जैसे उनके मालिक होते हैं, जैसे उनके हाकिम होते हैं ना, तो लोग भी जो है ना फिर उसी तरह के काम करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो होते हैं ना फिर वो अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, जिनमें सबसे बड़ा वसीला जो होता है वो मीडिया होता है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है, तो वो उस मीडिया के जरिए से जो है ना फिर अवाम उन्नास की जहन साजी कर रहे होते हैं। और अवाम जो है वो बिल्कुल कल अनआम भेड़ बकरी की तरह उस मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे फरमाते हैं कि मालदारों का कौम पर असर होना एक तबीई अमर है। आयत में खुशाइश मालदारों का खसूसियत से जिक्र करना इस तरफ इशारा है कि फितरी तौर पर आवाम अपने मालदारों और हाकिमों के अखलाक व आमाल से मुतासिर होते हैं। जब ये लोग बदअमल हो जाएं तो पूरी कौम बदअमल हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है उनको इसकी ज्यादा फिक्र होना चाहिए कि अपने आमाल और अखलाक की इस्लाह करते रहें। ऐसा ना हो कि ये ऐश परस्ती में पड़कर उससे गाफिल हो जाएं और पूरी कौम उनकी वजह से गलत रास्ते पर पड़ जाए, तो कौम के आमाल बद का वबाल भी उन पर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अमीर ये जो हाकिम लोग होते हैं वो गुनाह करते हैं तो लोग भी उनके पीछे पीछे जो है वो गुनाह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कसूर जो है वो तो सिर्फ सियासतदानों का है, कसूर जो है वो सिर्फ हुकूमत वालों का है? लोग तो देखा देखी और लोग तो मजबूर हैं उनका उनको फॉलो करने में। नहीं, लोग मजबूर नहीं होते हैं उनको फॉलो करने में, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस बात को बिल्कुल पीछे ही इस बात को क्लियर कर दिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि पहले अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी को क्लियर किया कि कोई समझना शुरू कर दे कि बेचारे गरीब आवाम जो होते हैं ना वो तो मजबूर होते हैं, तो जैसे जो है वो अमीर होते हैं वैसे ही गरीब करता है, तो फिर गरीब का कोई कसूर नहीं। नहीं, अल्लाह ताला ने पहले इस बात का जवाब दिया, फिर उसके बाद ये वाली आयत नाजिल फरमाई, या ये वाली आयत जो है वो बयान फरमाई, ठीक है। कैसे पहले पहले इस बात को कैसे क्लियर किया अल्लाह ताला ने, कोई अगर आप में से जवाब दे। अल्लाह ताला ने इस बात को पहले क्लियर कर दिया कि नहीं, गरीब को भी छोड़ा नहीं जाएगा, गरीब को जो है ना वो मजबूर कंसिडर नहीं किया जाएगा कि बस गवर्नमेंट वालों ने जो बुराई दिखाई गरीब को तो गरीब ने जो है वो उस बुराई को अपना लिया, तो इस वजह से गरीब के ऊपर जो है ना वो कोई गुनाह नहीं है, सारा गुनाह जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर भी गुनाह है और गरीब के ऊपर भी गुनाह है, अवाम के ऊपर भी गुनाह है, ठीक है, लेकिन अवाम का गुनाह जो है वो गवर्नमेंट वालों को भी मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनके अपने भी तो गुनाह होते हैं, उन्होंने जो अपनी जाती जिंदगी में बुराइयां करी होती हैं तो उनको उसकी सजा सजा भी मिलेगी, लेकिन जो अवाम की बुराइयां हैं उनकी सजा भी ऊपर गवर्नमेंट वालों को मिल रही होगी, ठीक है ना। सम टोटल अवाम की बुराइयों का ऊपर गवर्नमेंट वालों को उसका भी अजाब मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन अवाम को अपने गुनाहों का अजाब भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बात कैसे साबित होती है कुरान मजीद की, किस आयत से साबित होती है, कोई बताएगा? अकल और इख्तियार दिया गरीब को भी। हम आपसे ये को थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कुरान मजीद की कौन सी आयत थी कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर कर दिया था पहले ही। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी वमन ज़ल्ला फइन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र अख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअस रसूला। ठीक है, बिल्कुल यही बात है, सही है। हाँ, कि कोई किसी के बोझ को नहीं उठाएगा, ठीक है, जो गरीब ने गुनाह किया वो अपने बोझ को खुद उठाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र अख़रा, बिल्कुल सही जवाब आप दोनों ने दिया, ठीक है, वो अपने बोझ को खुद उठाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीब के गुनाहों का बोझ जो है ना वो अमीर के ऊपर कंधों पे डाल दिया जाएगा और गरीब का बोझ जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, ठीक है, गरीब अपने गुनाह का बोझ खुद उठाएगा। और अमीर क्या होगा, अमीर अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएगा, और चूंकि उसकी हरकतों ने गरीब को जो है वो माइल किया, तो ये जो माइल करना करने का काम होता है ना किसी को गुनाह की तरफ, ये भी तो अपना ही गुनाह होता है, ये भी तो अपने ही किया हुआ गुनाह होता है ना, कि आप दूसरों को गुनाह की तरफ माइल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब के बारे में पता चला कि वो जो है ना वो YouTube के ऊपर बैठ करके ना आजकल वीडियोस बना रहे हैं, YouTube पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, और वो वीडियोस क्या बना रहे हैं, चलो चलो अमेरिका चलो, चलो चलो कनाडा चलो, चलो चलो यूके चलो, चलो चलो जो है ना वो यूरोप के किसी मुल्क में चलो, चलो चलो ऑस्ट्रेलिया चलो, और उसके अंदर जो है ना वो लोगों को तरकीबें बता रहे हैं कि भाई आप जो है ना वो इस तरीके से फलाने मुल्क की जो है वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है वो रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से जो है वहाँ पे आप वहाँ पे जॉब तलाश करते हैं, भाई पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, चलो अमरीका चलो, चलो कैनेडा चलो, चलो जो है वो यूके चलो, ठीक है। तो अब वो यूट्यूब पे बैठ करके लोगों को जो है वो ना सिर्फ माइल कर रहे हैं, बल्कि माइल तो लोग पहले से ही हुए हुए हैं, लोगों को रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जितने लोग उनके माइल करने की वजह से यूके अमेरिका है ना और इस तरह के नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे और वहां पे जाकर के जो वो गुनाह करेंगे, ठीक है, या उनका ईमान जो है वो खत्म होगा या उनकी औलादों का ईमान खत्म होगा, ठीक है, तो अगरचे के वो उनका अपना गुनाह होगा कि वो ऐसे गैर मुस्लिम मुआशरे में जा करके सेटल हुए जहां पे उनका और उनके औलादों का ईमान खत्म हो गया, लेकिन वो गुनाह जो है वो इन साहब के ऊपर भी आएगा जो कि उनको तरीके सिखला रहे हैं कि कैसे तुम जो है वो मुसलमान मुल्कों को छोड़ करके जो है वो गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर मुंतकिल हो जाओ, ठीक है ना। ये गोया कि ना घर में बैठे गुनाह कमा रहे हैं उन तमाम लोगों का कि जो कि यूट्यूब की वीडियोज देख करके आगे जा करके अपना ईमान गंवाएंगे, ठीक है, तो उनका गुनाह जो है वो इनके कंधों के ऊपर भी, ठीक है। तो अब आपने याद दिलाया कि आपने एक सवाल किया था, इन्होंने YouTube के बारे में एक सवाल किया था, तो एक मिनट है जय, इस टाइम पे जो है ना वो बहुत सारी चीजें आके मर्ज हो जाती हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त है, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। YouTube के ऊपर चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं, एक मिनट बल्कि होल्ड करें। है ना, ये हलाल और हराम का फतवा जो है ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, ये काम जो है वो मुफ्ती हजरात का है, ठीक है। और मुफ्ती हजरात जो है ना फिर जब उनसे वो कोई फतवा पूछा जाता है तो वो पूरी तहकीक करते हैं किसी मसले की और उस तहकीक की रोशनी में फिर वो फतवा देते हैं कि ये चीज जायज है नाजायज है हलाल है या हराम है, ठीक है। तो ये उन्हीं का काम है और उन्हीं से पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हलाल हराम के अंदर फिर बहुत सारी तफसीलात आ जाती हैं या जायज़ नाजायज भी। बहुत तफसीलों के तफसीलात के साथ ही उसका जवाब दिया जाता है। बाकी जो आपके सवाल का बाकी हिस्सा था ना, जिसके अंदर आपने तफसील बयान करी थी कि भाई लोग वीलॉग्स बना रहे होते हैं और उसको वीलॉग्स के अंदर जो है ना, फिर वो एक तो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के, अब यानी छोटे छोटे बच्चे जो है वो मुस्तकिल वीलॉग्स बना रहे हैं और अपने जो है वो पेरेंट्स की इजाजत के साथ ही वीलॉग बना रहे हैं, ठीक है। और घरों के अंदर खवातीन जो हैं, जो कि पहले जो है वो पर्दा तो फिर भी नहीं करती थी, लेकिन कम से कम घर के अंदर की चीजें जो है ना, उन्होंने वो पूरी दुनिया के सामने नहीं एक्सपोज की हुई होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना करके और वीलॉग्स बना करके वो इवन घर के अंदर के भी सारे मामला जो है ना, वो भी यूट्यूब के ऊपर डाल करके या टिकटॉक पर डाल करके सारी दुनिया को दिखा रही होती हैं। तो क्या ये करना सही है, गलत है, जायज है, नाजायज है? तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत बुरी चीज है, बहुत ही गंदी चीज है। पर्दे का हुक्म ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है, और पर्दा जो है वो घर के बाहर वो बेपर्दगी की जाए या घर के अंदर बेपर्दगी की जाए, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के हुक्म के अंदर की नाफरमानी के अंदर ही शामिल होती है, ठीक है। और घर के अंदर के जो मामलात हैं वो दुनिया को दिखा देना, ये बेपर्दगी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, ये बेहयाई भी है, ठीक है। यानी बहुत ही परले दर्जे की एक बेहयाई वाली बात भी है, बेगैरती वाली बात भी है, ठीक है। मर्दों की भी बेगैरती इसके अंदर और खुल करके सामने आ जाती है, और औरतों की बेहयाई जो है वो भी और खुल करके सामने आती है। और फिर उसके बाद बच्चे जो है वो जिस तरीके से सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो ये यानी बहुत बहुत सारी इसके अंदर बुराइयां इसके अंदर है, ठीक है। तो और जाहिर है फिर वो अपने आप को इस तरह से एक्सपोज भी कर रहे होते हैं कि जिसके बाद फिर जो है ना वो यानी मल्टीपल अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी, ठीक है। और इसकी वजह से जब आपको पता है कि जब अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की जा रही होती है, तो हम जो है ना फिर हम अल्लाह ताला की हिफाजत से भी बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की हिफाजत जो है वो हमारे ऊपर से वापस ले ली जाती है, छीन ली जाती है, और जब अल्लाह की हिफाजत हमसे हटा ली जाती है, तो फिर हर किस्म के जो नुकसानात होते हैं और बुराइयां होती हैं और जो हमारे दुश्मन होते हैं, वो फिर हमारे ऊपर हमलावर होते हैं, ठीक है। जब पर्दा हट गया, जब एक 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 शील्ड हट गई अल्लाह ताला की हिफाजत की, तो फिर जाहिर है फिर उसके बाद जो है वो नजरे बद का भी शिकार हो रहे होते हैं, नजरें लग रही होती हैं लोगों की, और नजरें जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कि अल आइनु हक्कुन, है ना, कि नजर जो है वो लगती है, और जब नजर लगती है तो उससे जो है ना फिर इंसान ना सिर्फ बीमार हो सकता है बल्कि मौत भी आ सकती है, मौत तक आ जाती है, ठीक है, नजर लगने की वजह से। तो अब आप जब इस तरह से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर की चीजों को, अपनी नेमतों को जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं दुनिया के सामने ऐसे जो है वो नाफरमानियां करते हुए एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो निगाहे बद का भी शिकार हो रहे होते हैं, जादू टोने का भी शिकार हो रहे होते हैं, हसद की वजह से लोग जो है वो आपके ऊपर जादू भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर किस्म की जो बुराइयां होती हैं ना, तो फिर उनका वो शिकार हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ना कुछ लोग आप में से जो है ना वो बड़ा डिमांड कर रहे हैं, वीडियो बनाए, वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो हमने वीडियो जो है ना वो रखी तो है बच्चों के जो प्रोग्राम वगैरह हुआ था, लेकिन हम एक खास उसके ऊपर मैंने मैसेज भी डालना है कि उसको आप बहुत ही प्राइवेट स्फेयर के अंदर रखें, बहुत ही प्राइवेट रखें, ठीक है ना। और उससे जो है वो सिर्फ उतना ही मकसद हासिल करें कि जिसके लिए जो है ना वो उसको बनाया गया है, कि बस आप अपडेटेड रहें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और आप उनको फर्दर इम्प्रूव करने में उससे फायदा उठा सकें। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियोस जो हैं, अपने बच्चों की वीडियोस जो के तकरीर करते हुए या कराटे करते हुए अगर आपने पब्लिक स्फेयर में डाल दी ना, अवामुन नास के सामने डाल दी, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें नहीं कहिएगा कि बच्चा ऐसा बीमार पड़ता है कि वो ठीक होकर के नहीं देता, और हमारे पास जो ये नेमत थी ना, बड़े अच्छे दिन थे और बड़े अल्लाह ताला की नेमतें थी, वो सारी की सारी अब जो है वो छिन गई हैं, और ये हो गया है और वो हो गया है और ऐसा खराब हो गया है मामला, और पहले इतना अच्छा था अब जो है वो इतना खराब हो गया है, ये सारी बातें फिर बाद में नहीं कहिएगा, ठीक है ना। बिकॉज नबी अलैहिस्सलाम हमें पहले बता चुके हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की बातों को हल्का लेते हैं, हम उनको जो है वो अहमियत नहीं दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब हमारे ऊपर अजाब आ रहा होता है तो फिर हम शिकवे करते हैं, हम शोर मचाते हैं उसके बाद फिर, ठीक है। इनके सवाल का आखिरी हिस्सा ये था कि कि हमारा मसला ये भी है कि हम खामोश रहते हैं कि कुछ कहा तो बुरा लग जाता है, लेकिन हमारा कुछ ना कहना, कुछ ना समझाना गुनाह नहीं है कि हम खामोशी से सब होता देख रहे हैं, बस दिल में फिक्र हो या दुआएं करें, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, आप खामोश ना रहें, आपको किसने कहा कि आप खामोश रहें? ठीक है ना, आप लोगों को समझाएं, ठीक है ना, जिनको आप डायरेक्टली समझा सकते हैं आप उनको डायरेक्टली समझाएं, जिनको आप डायरेक्टली नहीं समझा सकते आप उनको इनडायरेक्टली समझाएं, ठीक है, यानी उन तक कोई ऐसा मैसेज भेज करके, कोई ऐसा पैगाम भेज करके जिसके अंदर उनकी करी हुई जो बुराइयां हैं वो उनके सामने खुल सकें, ठीक है ना। डायरेक्टली उनको एक कहने का मतलब ये होता है कि तुम ये काम गलत कर रही हो, तुम ये ना करो, ये डायरेक्टली समझाना होता है, ये सबसे अफजल चीज है, लेकिन ये हर जगह मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हमें बताया है ना कि जहां तुम रोक सको वहां पे हाथ से रोको, लेकिन जहां पे हाथ से ना रोक सको वहां पे जुबान से रोको। क्या मतलब कि ये मुमकिन होता है कि आप हाथ से नहीं रोक सकते ऐसी जगहों पर, कुछ जगहों पे आप चीजों को हाथ से नहीं रोक सकते, तो वहां पर फरमाया कि जुबान से रोको, लेकिन फिर आगे भी फरमाया कि जहां पे तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते तो वहां पे फिर अगला दर्जा बताया कि दिल के अंदर उसको बुरा समझो, ठीक है। तो क्या मतलब कि ऐसे भी मौके होते हैं कि जहां पर आप जुबान से डायरेक्टली लोगों को मना नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसका एक कम दर्जा ये है कि आप जुबान से इनडायरेक्टली मना करने की कोशिश करें, ठीक है ना, ऐसे मैसेजेस भेज करके या उनको क्लासेस के अंदर इनवाइट करके या क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स उनको फॉरवर्ड करके, ठीक है। खुद भी एक इंसान अपने गलतियों को फिर किसी की लाइट में देखता है, किसी तालीम की लाइट में देखता है, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये बात तो मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली समझाना जुबान से, लेकिन अगर आप जुबान से बिल्कुल नहीं समझा सकते किसी को, ठीक है, तो आप दिल के अंदर गुनाह समझें उसको, उससे उससे कराहियत करें, उससे नफरत करें और इसकी फिक्र में लगे रहें कि कैसे मैं उसको समझाऊं, कैसे मैं उसको समझाऊं, कैसे मैं उस तक बात पहुंचाऊं, कैसे मैं उसको जो है वो उसके नुकसान से बचाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो तीसरा दर्जा जो है ना वो दिल में बुरा समझना, इसके अंदर ये चीज भी शामिल हो जाती है कि आप फिक्र में तो रहें ना, हर वक्त समझाने की फिक्र में रहें, मौके की फिक्र की तलाश में रहें, ठीक है, बस हम खामोश होकर के सब देखते रहें तो ये ऐसा नहीं है जैसे कि आप समझ रही हैं, जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रही हैं कि सबको हम देखते रहें, और नहीं, वो अगर आप खामोश होकर के सबको देखते रहेंगे ना और दिल के जज्बात आपके ऐसे होंगे कि बस वो तो बर्बाद हो गया, उसको के ऊपर तो अल्लाह का अजाब आने वाला है, बस मैं तो अपनी इबादत में लगा हुआ हूँ और मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है ना, और दूसरे की फिक्र खत्म हो गई, तब अल्लाह का अजाब जो है ना वो आपके ऊपर भी आएगा, ठीक है, तब अल्लाह का अजाब आपके ऊपर भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बल्कि आप फिक्र में लगी हुई हैं और तलाश में लगी हुई हैं कि कैसे मैं उसको समझाऊं, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब से आप भी बच जाएंगी, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी इस फिक्र को दूसरे की भी हिदायत का सबब बना दे, ठीक है ना। और ये जो दुआएं करना जो है ना, जिसको कि हम बड़ा यानी ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है ना कुछ ना करना, बस दुआएं करना, ये हमारी अपनी गलती है, ठीक है ना, ये हमारी गलती बल्कि बहुत बड़ी गलती है कि हम जो है ना वो बस दुआएं करने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नहीं, असल चीज है ही दुआ, आप हम समझते हैं कि हमारा अमल असल चीज है, ये हमारी बेवकूफी है कि हम अपने अमल को असल चीज समझ रहे होते हैं, ठीक है ना, ये हमारी बेवकूफी है कि हम अपने अमल को असल चीज समझ रहे होते हैं। नहीं, करना जो कुछ है अल्लाह ने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह ताला से दुआ असल चीज है और उसके बाद जो है ना वो जो अल्लाह ताला दिल में डालता है हम उसको अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझ करके उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक डिफरेंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी यहाँ पर भी है, ठीक है, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे ना परसेप्शन ऑफ रियलिटी के, भाई बिलियनर ज्यादा होंगे तो उसका मतलब है कौम तरक्की याफ्ता है, जबकि कुरान जो है वो बिल्कुल दूसरी चीज बता रहा है। उसी तरीके से दुआ का भी मामला ऐसा ही है, हम दुआ को हम बिल्कुल गलत चीज समझ रहे हैं जबकि असल में उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और होती है, ठीक है। चले, बहुत ज्यादा देर हो गई और कुछ जो बाकी लोगों की क्लासेस भी थी तो वो भी अब सोच रहे होंगे कि इनको क्या हो गया आज, तो इस वजह से हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।